नारायण रघुनाथम सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यदवन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् 23 अध्याय श्लोक संख्या 14 संपीड्या पायोम पार्षणिभ्याम वायोम उद्सारयन् शनैः नाभ्याम कोष्ठेषु अवस्थाप्य ह्रेत कंठ शीर्षणी संपीड्य पायुं पार्श्विभ्याम वायुमुत्सारयञ्छनैः नाभ्यां कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृदुरः कण्ठशीर्षणिः संपीड्यपायुं पार्श्विभ्यां वायुमुत्सारयञ्छनैः नाभ्यां कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृदुरः कण्ठशीर्षणिः संपीड्यपायुं पार्श्विभ्यां यायुमुत्सारयञ्छनैः नाभ्यं कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृदुरः कण्ठशीर्षणिः संपीड्यपायुं पार्श्विभ्यां वायुमुत्सारयञ्छनैः नाभ्यां कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृदुरः कण्ठशीर्षणिः సంపీడ్య వాయుం పార్శ్వేభ్యాం వాయుమసారి అంచనై కంఠశీర్షణి మాతాజీ సంపీడ్యా రోక్కర్ పాయోం గుదద్వార్ పార్శ్వేభ్యాం ఏడీ సే వాయోం ఊపర్ జానే వాలీ వాయు కో ఉత్సారయన్ ఊపర్ ధకేల్ కర్ సనై హే ధీరే ధీరే నాభ్యాం నాభి సే కుష్ఠేషు హృదయ తథా కంఠ మే అవస్థాప్య స్థిర్ కర్కే హృత్ హృదయ మే ఊరహ ఉపర్ కి ఓర్ కంఠహ గలా శీర్షణీ దోనో భావం కే మధ్య ప్రభుపాద జీ కే ద్వారా అనువాద తథా తాత్పర్య అనువాద జబ్ మహారాజ్ పృథు కే విశేష యోగి కే ఆసన్ జబ్ మహారాజ్ పృథు నే విశేష से యోగి के आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नाभि चक्र से होते हुए हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भावों की मध्य स्थिति में ठेल दिया पुनरावृत्ति करें जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नाभि चक्र से होते हुए हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भावों की मध्य स्थिति में ठेल दिया। तात्पर्य यहां पर जिस आसन का वर्णन है वह मुक्तासन है। योग विधि में निद्रा भोजन तथा मैथुन को वश में करने वाले विधि विधानों का पालन करने के बाद विभिन्न आसन करने की अनुमति दी जाती है। योगी का चरम लक्ष्य इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करने में समर्थ होना है। जिसने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर ली है वह जब तक चाहता है शरीर में रहता है या शरीर त्याग कर ब्रह्मांड के भीतर या बाहर जहां भी चाहता है जा सकता है। कुछ योगी अपना शरीर त्याग कर उच्चतर लोकों में जाकर वहां की भौतिक सुविधाओं का भोग करते हैं, किंतु बुद्धिमान योगी इस संसार में व्यर्थ अपना समय गंवाना नहीं चाहते। वे उच्चतर लोकों की भौतिक सुविधाओं की भी परवाह नहीं करते। वे तो दिव्य आकाश में भगवान के धाम पहुंचने में रुचि रखते हैं। इस श्लोक के वर्णन से लगता है कि महाराज पृथु उच्चतर लोकों में जाने के तनिक भी इच्छुक न थे। वे तुरंत भगवान के धाम लौटना चाह रहे थे। यद्यप महाराज पृथु ने कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के पश्चात समस्त योगाभ्यास बंद कर दिया था, फिर भी उन्होंने पूर्वाभ्यास का लाभ उठाते हुए भगवान के धाम जल्दी लौट जाने के लिए अपने आप को ब्रह्मभूत पद पर स्थापित कर लिया। इस विशेष प्रकार के आसन मुक्तासन का उद्देश्य कुंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना है तथा धीरे धीरे प्राण को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र और फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र तथा अंत में आज्ञा चक्र तक ले जाना है। जब योगी दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने में सफल होता है और तब वह किसी भी लोक को वैकुंठ लोक या गोलोक तक जा सकता है। कहने का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को भगवान के धाम जाने के लिए ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंचना होता है, किंतु जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं या भक्ति योग का अभ्यास करते हैं वे मुक्तासन का अभ्यास किए बिना ही भगवान के पास लौट जाते हैं। मुक्तासन का उद्देश्य ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, क्योंकि बिना ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त किए कोई भी दिव्याकाश में नहीं जा सकता। भगवद्गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, माम च उभ्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्मभुआय कल्पते। भक्ति योग का अभ्यास करने वाला भक्ति योगी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहता है। यदि भक्त ब्रह्मभूत पद पर रहा आता है तो मृत्यु के बाद स्वतः दिव्याकाश में प्रवेश करता है और वह भगवान के पास वापस चला जाता है। अतः भक्त को इसका खेद नहीं होना चाहिए कि वह कुंडलिनी चक्र का अभ्यास नहीं कर पाया अथवा एक के पश्चात एक 6 चक्रों को भेदन नहीं कर सका। जहां तक महाराज पृथ्वी की बात है, वे इस विधि को पहले ही अभ्यास कर चुके थे और चूंकि वे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे अतः उन्होंने षट चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाया और इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करके दिव्य आकाश में प्रवेश किया। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। सर्वप्रथम हम आप सभी वैष्णवों के चरणों में सत्ता नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अब आपके दृष्टि श्रीमद् भागवतम के 30वें अध्याय महाराज पृथु का भगवत धाम गमन की तरफ ले चलते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वर्णन किया गया है कि एक योगी किस प्रकार योगाभ्यास के बल से शरीर के अंदर अवस्थित षट चक्रों का भेदन करके ब्रह्मरंध से होते हुए प्राण को निकालते हुए वह उच्चतर लोकों में चला जाता है। इस अध्याय में एक योगी के यौगिक क्रियाओं का वर्णन है। तो महाराज पृथु ये ध्रुव वंश में आते हैं। ध्रुव वंश में ही आगे चलकर के राजा वेन के शरीर का मंथन करने से महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ और यह एक ऐसे राजा थे जो पृथ्वी पर सबको रहने का आश्रय प्रदान किए और साथ ही साथ भोजन की भी व्यवस्था प्रदान किए। अन्नदाता राजा थे। महाराज पृथु के राज्य में सभी प्रजा सुखी रहती थी और इनके राज्य में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। जब इनकी अवस्था ढल चुकी तो अपने पुत्रों को पृथ्वी का सारा भार सौंपकर अपनी पत्नी के साथ सांसारिक भोगों से प्रांगमुख होकर तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। किस प्रकार से शरीर को त्यागना चाहिए उसका यहां वर्णन किया गया है। जब वे अपनी धर्म पत्नी के साथ वन में गए तो कुछ दिन फल को खाए, तत्पश्चात कंदमूल फल का आहार किए, फिर पत्तों का आहार किए, फिर जल पीकर कुछ दिन बिताए, फिर इवाव पीकर कठोर तपस्या करने लगे। गर्मी के दिनों में वे पंचाग्नि तापते और जाड़े के दिनों में आकंठ जल में रहने लगे। बरसात के दिनों में शरीर के ऊपर जल की धारा सहते। इस तरह से विभिन्न प्रकार की वो कठोर तपस्या करते। तो महाराज पृथु एक योगी थे और एक यौगिक क्रिया को जानते थे, जैसे अष्टांग योग है, इन क्रियाओं की जानते थे। और योगियों में बहुत सी योगी हैं, जैसे चारों कुमार हैं वो योगी हैं, नव योगेश्वर वो भी योगी हैं, दुर्वासा जी हैं वो भी योगी हैं, नारद जी ये भी योगी हैं, ये सब योगी हैं। इंद्रियों को कंट्रोल में करके ये जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। तो योग साधना में ये बिल्कुल परिपक्व थे। तो जो व्यक्ति योग साधना में परिपक्व होता है तो वह व्यक्ति अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार त्याग सकता है, जैसे भीष्म पितामह जी, उनके पिता की तरफ से इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वो यौगिक क्रियाओं को जानते थे। तो महाराज पृथु गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किए थे, क्योंकि भगवान के अवतार थे। तो प्रत्येक योगी का एक लक्ष्य होता है और बुद्धिमान योगी का जो लक्ष्य होता है वो भगवत धाम प्राप्ति का लक्ष्य होता है। और कुछ ऐसे योगी होते हैं जो भोग भोगते हैं, उच्चतर लोकों में जाकर के वो भोगों को भोगते हैं। तो योगासन करने से विभिन्न प्रकार की रिद्धि सिद्धियां भी सामने उपस्थित हो जाती हैं। लेकिन पृथु महाराज योग क्रियाओं को जानने के बावजूद भी भौतिक भोगों को नहीं चाहते थे, क्योंकि ये राजा थे और समस्त भोगों को भोग चुके थे। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति। उच्चतर लोकों में भी सबसे उच्चतम जो लोक है वो भगवत धाम है, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम है। तो वहां जाने के लिए भगवान का चिंतन करना पड़ता है। जब तक से कोई भगवान का चिंतन नहीं कर सकता है तब तक से भगवत धाम नहीं पहुंच सकता है। अगर केवल प्रकाश का चिंतन करते हुए कोई शरीर छोड़े तो सिद्ध लोकों में जाता है और वहां से पुनः वो नीचे भी आ जाता है, गिरने की संभावना रहती है। तो पृथु महाराज जी कैसी योगी हैं जो अपने मन को भगवान के शरीर में लगाए, कैसे लगाए, मुक्तासन से। तो आसन बहुत जरूरी है। जो भक्त हैं उनको इन सब प्रक्रियाओं को जानना चाहिए। योगासन से शरीर शारीरिक अवस्था सही रहती है। विभिन्न प्रकार के आसन हैं, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि योग विधि में निद्रा पर, भोजन पर और मैथुन को वश में करना चाहिए। जो भोजन पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, निद्रा पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, मैथुन पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता है और उसका मन भगवान में नहीं लग सकता है। शरीर को कंट्रोल में करने के लिए योगासन जरूरी है, क्योंकि शरीर एक साधन है। जब शरीर ही सही नहीं रहेगा तो इससे कैसे आप साधक की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी से व्याख्यान देते हैं कि ये कलयुग है, इसमें कोई अष्टांग योग का सेवन नहीं कर सकता है। विभिन्न प्रकार के आसन हैं, लेकिन आप सुखासन से तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे आप सब बैठे हैं, ये सुखासन है, सुखपूर्वक आसन लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे जप करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। पृथ्वी महाराज हम लोग नहीं जानते हैं इन सब यौगिक क्रियाओं को, क्योंकि हमें स्वतः उसका अनुभव नहीं है, तो हम उस बारे में क्या वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जो योगी हैं इन क्रियाओं को जानते हैं, उस शुरू से ही अभ्यास करते हैं, वो वैरागी होते हैं, वैरागियों के संग में रहते हैं, एकांत में रहते हैं और इन सब क्रियाओं को अच्छी तरह से करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। तो पृथु महाराज योगी के आसन साधा मुक्तासन, और मुक्तासन के कल असीम कृष्ण प्रभु बता रहे थे मुक्तासन, हम तो मुक्तासन करते नहीं इसलिए मालूम नहीं है, लेकिन कल ये बताए थे दोनों एड़ियों को गुदा द्वार पर रखते हैं, इसे खड़े हो जाते हैं मुक्तासन। तो मुक्तासन के बाद कहते हैं कि जो योगी क्रियाएं हैं, जो अष्टांग हैं, इनमें सक्षम हो जाता है, तो वह है अपने शरीर को जहां चाहे वहां जैसे चाहे वैसे रख सकता है। जैसे यह शरीर है तो इस शरीर में विभिन्न प्रकार के चक्र हैं, और योगी लोग उन चक्रों का भेदन करके ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को निकालते हैं। तो चक्र हमारे शरीर में सन्निहित विभिन्न प्रकार की अद्भुत शक्तियों के केंद्र हैं। शरीर के अंदर चक्र हैं और ये समस्त चक्र मेरुदंड के मूल से प्रारंभ होकर उनके ऊपरी भाग तक जुड़े रहते हैं, और साधारण अवस्था में ये चक्र खिले कमल के सदृश अधोमुख हुए अविकसित रहते हैं। जैसे हमारे अंदर जो चक्र हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार चक्र, ये विभिन्न प्रकार के चक्र हैं। मेरुदंड जो कहते हैं यहां से गुदा द्वार से लेकर मेरुदंड तक ये सब अवस्थित हैं। कौन से चक्र कहाँ रहता है उन चक्रों का वर्णन है। तो इस देह में प्राय 8 चक्र होते हैं, इसमें तो प्रभुपाद 6 चक्र बता रहे हैं, और शरीर में 9 दरवाजे हैं। तो जो योगी होते हैं, समाराज पृथ्वी योगी हैं, तो इन चक्रों को भेदन करना जानते हैं कि किस प्रकार से हवा को किस चक्र में ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा यह शरीर हवा पर टिका हुआ है। प्राण अपान समान व्यान उदान ये सब हवा है, वायु पर टिका हुआ है, और जिवे ही वायु हमारे शरीर में प्रतिक्रिया करना बंद कर देती है तो शरीर मर जाता है। तो जितने भी ये जो चक्र हैं ये हमारे शरीर में अवस्थित रहते हैं, जैसे मूलाधार चक्र हैं। मूलाधार चक्र गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे है, गुदा द्वार मल द्वार के पास। प्रभुपाद जी से वर्णन कर रहे हैं कि विशेष प्रकार के आसन मुक्तासन का उद्देश्य कुंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना होता है, और धीरे धीरे प्राण को, प्राण माने वायु, वायु को ही प्राण कहते हैं, प्राण को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र और अंत में आज्ञा चक्र तक ले जाते हैं। तो ये हवा को रोकना प्रणाम विधि से अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अभ्यास करते हैं। और स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ू के पास इस चक्र का स्थान है, पेड़ू मणिपुर चक्र इसका स्थान नाभि मूल है, अनाहत चक्र यह चक्र हृदय के पास है और दोनों अस्तरों के मध्य में यह है हृदय चक्र है, दोनों अस्तनों के मध्य में यहां ये अस्तन दोनों तरफ है, बीच में हृदय चक्र है और विशुद्ध चक्र इसका स्थान कंठ है और आज्ञा चक्र ये दोनों भावों के बीच में है। रूपा जी कहते अंत में आज्ञा चक्र तक वे ले जाते हैं, जब दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। उनके जो प्राण है, जो शरीर जब छोड़ना चाहते हैं तो ब्रह्मरंध्र है, यहां से उनका प्राण निकल जाता है। तो योगी इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और अष्टांग योग के जो विधान है उनको जानते हुए इन क्रियाओं को अभ्यास करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं, त्याग देते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में ये सिद्ध किया गया है कि किस प्रकार से शरीर को त्यागना चाहिए। तो महाराज पृथु इस यौगिक क्रियाओं को जानते थे, चक्र भेदन क्रियाओं को जानते थे कि किस प्रकार से प्राण को ऊपर चढ़ाया जाए, ब्रह्मरंध्र में ले जाया जाए, इस प्रक्रिया को पृथ्वी महाराज जानते थे। अंत में इन्हीं चक्रों के माध्यम से मतलब शरीर का भेदन किए, इन सब चीजों को जानते हुए भी पृथ्वी महाराज अंत में अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाए। सब मिला जुला करके ये जो प्राणायाम है, ये जो यौगिक क्रियाएं हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है मन को भगवान में लगाना। तो आप देखिए विभिन्न प्रकार की योगी लोग योगाभ्यास केंद्र खोले हैं और प्रचार करते हैं, वे प्रकाश का चिंतन करने को बताते हैं, प्रकाश का चिंतन करें। तो अगर हम केवल प्रकाश का चिंतन करें तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं। और यहां पृथ्वी महाराज इन क्रियाओं को जानते हुए भी वे अपने मन को सीधे भगवान के चरणों में लगाए, भगवान विष्णु के चरणों का चिंतन करते हुए पृथ्वी महाराज शरीर को त्याग दिए। तो यहां प्रश्न ये उठ सकता है, क्या शरीर त्यागने के लिए इन यौगिक क्रियाओं को जानना जरूरी है, अष्टांग योग जानना जरूरी है? अगर हम अष्टांग योग न जाने तो हम शरीर को नहीं त्याग सकते हैं? त्याग सकते हैं। भक्ति योग के माध्यम से शरीर को त्यागने की विधि बताई गई है। तो पृथु महाराज भक्ति योग के माध्यम से शरीर को त्यागे, भक्ति योग जैसे भीष्म पितामह जी ये भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागे, परीक्षित महाराज भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागे, यह है भक्ति योग की विधि। योगासन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सुखासन में रह करके जप करते हुए भगवान का चिंतन करते हुए शरीर त्याग सकते हैं। योगी लोग जब चाहे तब शरीर त्याग कर सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग भी अगर शरीर को त्यागना चाहे तो त्याग सकते हैं। कैसे? आप अन्न जल छोड़ दीजिए, भोजन मत करिए, जल छोड़ दीजिए, अन्न जल का त्याग करिए, आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा। एक दिन आप भोजन नहीं करते तो शरीर की हालत खराब हो जाती है, आप देख लीजिए। अगर कोई मरना चाहता है तो उस अन्न जल को त्याग देगा तो शरीर उसका छूट जाएगा। जब तक आप जीवित हैं तब तो भगवान का स्मरण करें। मान लीजिए आप वृद्धावस्था में आ गए और चाहते हैं कि हम शरीर को छोड़ें और आपको कष्ट हो रहा है तो ठीक है, अन्न जल अगर छोड़ देंगे तो आपका शरीर छूट जाएगा। भगवान का स्मरण करते हुए आप संसार से विदा लीजिए। शरीर छोड़ने की तो बहुत सी हैं, जैसे देवहूति माता है, वो योग शक्ति को जानते थे, घर पर ही रहकर उन्होंने भक्ति योग का अभ्यास किया और योग क्रिया से अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया और उनका शरीर के जितने भी तत्व थे वे सब जल में परिणत हो गए, उनका शरीर ही एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। योग क्रिया से देवहूति माता ने शरीर त्याग दिया। भगवान कपिल देव के मुखारविंद से उपदेश सुनकर वो भी जो प्रक्रिया में प्रांगत हो गए थे और उन्हीं क्रियाओं से उन्होंने अपना शरीर त्यागा। जैसे सती, शिव जी की पत्नी सती, जब दक्ष ने शिव जी का अपमान किया तो सती भी अपनी मायके में जाकर यज्ञशाला में अपनी दाहिना अंगूठी से जोगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को त्याग दिया। देर नहीं हुई क्योंकि वो यौगिक क्रिया को जानती थी। धृतराष्ट्र महाराज गंधारी के साथ हिमालय में जाकर वे भी अपने शरीर को त्याग दिए। 5 दिन के बाद ही वे हस्तिनापुर से गए, उनको 5 दिन हुए, 5 दिन के बाद अपने शरीर को त्याग दिए, वो यौगिक क्रिया को जानते थे। तो पृथु महाराज भी अपने धर्म पत्नी अर्ची के साथ वन में जाकर वो भी यौगिक क्रियाओं के माध्यम से भगवान का चिंतन करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। तो यौगिक क्रियाओं का अष्टांग योग को हम सब तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो योगी इन प्रक्रिया को जानता है तो शरीर त्यागने में उसको सहायता होती है, सहायता मिलती है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी से व्याख्यान देते हैं कि मनुष्य को ब्रह्मभूत की अवस्था पर आना चाहिए। ब्रह्मभूत भक्ति पथ को ब्रह्मभूत कहा गया। भक्ति पथ, भक्ति जो के माध्यम से हम सभी को शरीर त्यागने की विधि को अपनाना चाहिए। मरने को तो बहुत लोग मरते हैं, कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कोई जहर खा लेते हैं, कोई अग्नि में जल जाते हैं, बहुत से कोई जब चाहे तब मर सकता है, लेकिन मरना है तो वैसा मरो। जय जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। मरना है तो वैसा मरो कि बार बार मरने की प्रक्रिया न आनी पड़े। बार बार जो जन्म लेने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। तो जो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है वह व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है। तो शरीर त्यागने के लिए हम लोगों को भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। पृथु महाराज भक्ति योग में प्रांगत थे, तो जो योगाभ्यास करते हैं उनका मन झट से भगवान में लग जाता है। ये सब अभ्यास पर डिपेंड करता है। तो भक्ति योग पर जोर दिया गया है, भक्ति योग का हम लोग को अभ्यास करना चाहिए। जीवन को ऐसे सांचे में ढाल लेना चाहिए कि जीवन के अंत समय में भगवान की स्मृति आ जाए। यदि भगवान की स्मृति नहीं आएगी तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर्म मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा अव्यम पदम अव्ययम तत्। निर्मान मोहा, मान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए, जगत से बैराग लेना चाहिए और ममता को त्याग देनी चाहिए। साधु महात्मा हम सब बने हैं, फिर भी महात्मा बनने के बाद भी लोगों की परिवार में आसक्ति होती है, याद रखें इस बात को। अब देखिए कि हमारे मन का केंद्र बिंदु कहां जा रहा है। माता पिता देखे में भी आसक्ति बनी रहती है, परिवार की चिंता, भाई की चिंता, समाज की चिंता, लोगों को लगा रहता है माता बनने के बाद भी। अब जैसे देखिए कुंती महारानी भगवान से स्तुति करती हुई कहती हैं कि पुत्र के प्रति जो मेरा स्नेह है यह स्नेह का बंधन समाप्त हो जाए, हे प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें और हमारा पूर्ण मन आप में लग जाए। अगर मर भी रहे हैं, हम शरीर त्याग रहे हैं और भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि जहां आपकी चेतना होगी आप वहीं जाएंगे। जमदूत नहीं पकड़ेंगे लेकिन हालांकि आप उच्चतर लोकों में जाएंगे, उच्चतर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी चेतना की शुद्धि नहीं है। जैसे अजामिल की चेतना की शुद्धि नहीं थी, नारायण नाम लिया था लेकिन उसका मन तो उसके लड़के में आ सकता था, उसके जीवन की अवधि बढ़ गई। जमदूत नहीं ले जा सके लेकिन 16 वर्ष तक वो हरिद्वार में रहकर भक्ति योग का अभ्यास किया और पुनः भक्ति योग के माध्यम से वो शरीर को त्याग कर भगवत धाम चला गया। जैसे महाराज दशरथ, जिसके घर में साक्षात भगवान का अवतार हुआ है, जिस समय दशरथ जी का शरीर छूटा उस समय उनका कोई पुत्र उनके सामने नहीं था, तो दशरथ जी मरते समय अर्थात शरीर को त्यागते समय 6 बार राम राम कहे, रामायण में वर्णन है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनुपरि हरि रघु वीर विरह, राउ गयउ सुरधाम। 6 बार राम राम कहे और 6 बार राम राम कहकर शरीर त्यागे और सुरधाम मतलब देवलोक स्वर्ग चले गए, वैकुंठ नहीं गए। अब यहां प्रश्न उठता है कि 6 बार राम राम क्यों कहें? क्योंकि दशरथ जी को, भगवान राम जी को वन में गए केवल 6 दिन हुए थे, छठा दिन हुआ था, तो छठा दिन जब 6 दिन बीते तब वे राम 6 बार राम राम कहे, सुमंत्र जी आकर उनको सूचना दिए, तो 6 दिन हो गए थे तो इसलिए 6 बार राम राम पुकारे। तो उनके मन में ये चिंता बनी रहती थी कि वो मैंने अपने पुत्र को राज देने को कहा लेकिन राज नहीं दे सका, राज्याभिषेक नहीं देख सका और वन दे दिया। ओह, ये चेतना उनके मन में थी। इसके लिए महाराज दशरथ वैकुंठ में नहीं गए, क्योंकि उनके जो मन की जो धारणा थी कि मैं भगवान का राज्याभिषेक देखूं, तो वे स्वर्ग में गए, उच्चतर लोक स्वर्ग है, वहां गए। जब 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या लौटे, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो स्वर्ग से महाराज दशरथ आए थे और राज्याभिषेक में भाग लिए, दर्शन किए, इसके बाद तब वो साकेत धाम पे, ये वर्णन आता है। तो मरते समय हम लोगों की जहां चेतना होगी तब तो हम भगवत धाम जाएंगे, शुद्ध चेतना नहीं होगी तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, चेतना शुद्ध होनी चाहिए। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में ये शिक्षा दी गई है कि मरते समय हमारी आसक्ति किसी देह में नहीं होनी चाहिए, परिवार में नहीं होनी चाहिए, वो आसक्ति केवल भगवान में होनी चाहिए, इसमें सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी चेतना कुत्ते बिल्ली में हो जाएगी तब कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे, जैसे महाराज भरत, जट भरत जी, राजर्षि भरत, उनकी चेतना एक हरिण में हो गई तो हरिण बन गए। राजा पुरंजन, उनकी चेतना पुरंजन स्त्री में रही तो वो स्त्री बने। चेतना पर डिपेंड करता है कि मरते समय आपकी चेतना कहां है। आप राम राम बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आपकी चेतना कहां है? चेतना के अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है, तो आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। आप उच्चतर लोक में जाएंगे, जमदूत आपको नहीं पकड़ सकते, उच्च लोक में जाएंगे, फिर साधना करेंगे तब आप ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए अपने को ऐसे सांचे में ढालना चाहिए कि देह गेह में आसक्ति न रहे, इसमें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए जितने भी भक्त हुए हैं अंत में सब कुछ त्याग करके मन में गए हैं, हमारी आसक्ति न हो। मन में इसलिए जाते हैं कि एकांत अवस्था रहती है, एकांत स्थान में हम कंदमूल का हार का सेवन करते हुए, योगाभ्यास करते हुए भक्ति योग के माध्यम से शरीर को त्याग दें। अगर आसक्ति रहेगी तो फिर हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, फिर हम संसार में ही चक्कर काटते रहेंगे। और सोचिए कितना बड़ा बंधन है, महात्मा बनने के बाद भी लोगों की आसक्ति परिवार में रहती है। अपने मन से चिंतन करके आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए, ऐसे ऋषि मुनियों का भी अनुभव है, ममता बहुत जबरदस्त होती है। भीष्म पितामह को देखिए, ये तो ब्रह्मचारी थे लेकिन हस्तिनापुर के प्रति था, कैसे हस्तिनापुर सुरक्षित रहे। धृतराष्ट्र महाराज के कितनी पुत्र की प्रति ममता है, जबरदस्त मोह है, इतने आसक्त थे कि हमेशा सुखी देखना चाहते थे, मर्यादा को भी भूल गए मोहासक्त में। लेकिन विदुर जैसा उनका भाई रहा जो जीवन के अंत में अपनी वाक बाणों से भेदन करके हस्तिनापुर से सीधे निकाल दिए और हिमालय की तराई भी पहुंचा दिए, और वहां जाकर वे भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़े तो भगवत धाम गए। भाई का एक कर्तव्य होता है कि अपने भाई का हित करें। कहने का मतलब है संसार से विरक्ति, संसार से विरक्त होना बहुत जरूरी है। जीवन भर परिवार में ही आसक्त नहीं होना चाहिए, देह गेह से आसक्ति धीरे धीरे हटानी चाहिए, यही वैदिक शास्त्रों से शिक्षा मिलती है। पृथु महाराज देखिए सब कुछ छोड़ करके अंत में जा रहे हैं, वन में गए, भक्ति योग के माध्यम से शरीर को त्याग। तो शरीर को कैसे त्यागा जाए, कैसे छोड़ा जाए, मरना तो हम सबको है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योग का अभ्यास करें, जहां रहें वहां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मरते समय कैसे वातावरण होना चाहिए? भीष्म पितामह जी का जैसा वातावरण रहा या परीक्षित महाराज का जैसा वातावरण रहा, जो भगवान की कथा को श्रवण करके और अपने मन को भगवान में लगा दिए, भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल पर हो गए और शरीर में से निकल गए, शरीर में वे नहीं रहे। तक्षक नाग के डसने से पहले वे चले गए, क्योंकि हम शरीर हैं नहीं, हम आत्मा हैं, तो उस प्रक्रिया को जानते थे। शरीर तो सबको छोड़ना है, तो हम लोग को अपने को वैसे सांचे में ढाल लेना चाहिए कि जहां रहे वहां भगवान का स्मरण हो। जैसे आप कल आप श्रवण कर रहे थे कुलशेखर महाराज का, कृष्ण त्वदी ये पदपंग कजपंजरांतम यदैवमे विशतो मानसराज हंस। अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा देना चाहिए, आज ही मन लग जाए, क्योंकि बुढ़ापा में पता नहीं क्या होगा, कफ पित्त वा उसे कंठ भर जाएगा तो फिर भगवान का नाम नहीं आएगा। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भगवान का नाम ले लेना चाहिए, भक्ति कर लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मरते समय बिल्कुल आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। जैसे एक कवि ने चित्रण किया है कि मरते समय मैंने श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। श्री सोहना मुकुट हो, श्री मुख पे काली लट हो, वही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबर कसी हो, मुख में खूब हंसी हो, ये छवि मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। ये है प्राण त्यागने की विधि। जैसे भीष्म पितामह जी भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग दिए, तो ये शरीर त्यागने की विधि है। तो हम सब भक्त बने हुए हैं, तो अपने को समझते हैं कि हम लोग भगवान के दास हैं। तो संपूर्ण भागवत के भक्तों का और योगियों का यही निष्कर्ष है कि हम लोगों को अपने को ऐसे सांचे में ढाल लेना चाहिए कि परिवार की आसक्ति से धीरे धीरे विमुख हो जाएं और हमारी आसक्ति केवल भगवान में लगी रहे, तब हमारी मुक्ति हो सकती, भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो आसक्ति के चलते हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, फिर उच्चतर लोक में जाएंगे, वहां जाकर के भी यदि साधना नहीं करेंगे तो फिर नीचे आएंगे, तो फिर 84 के चक्कर में ही पड़े रह जाएंगे। तो भक्ति योग का अभ्यास, अंत में त्याग बहुत जरूरी है। संसार में जो ममता है बहुत जबरदस्त ममता है, जिस परिवार में आदमी जन्म लेता है उस परिवार के प्रति लोगों की ममता बनी रहती है, आसक्ति बनी रहती है कि हमारा परिवार कैसे उन्नति करे। आप देख लीजिए द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी मुहासक्त में ये लोग आसक्त थे। तो अंत में भगवान का है चिंतन करते हुए शरीर छोड़े। तो ममता बहुत जबरदस्त होती है, ममता तूने गई मेरे मन पे, ममता में आसक्ति। तंथा के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनंते, ममता तूने गई मेरे मन पे। शरीर थक गया, वृद्धा हो गया, आंखी की ज्योति चली गई, दांत टूट गए, लेकिन फिर भी ममता नहीं गई। हाय परिवार, समझिए ना, उसी का चिंतन करते हुए आदमी शरीर छोड़ देता है। तो महाराज पृथ्वी की जीवनी से, भीष्म पितामह जी की जीवनी से, परीक्षित महाराज की जीवनी से, माता देवहूति की जीवनी से, जितने भी ये वैष्णवी हैं या वैष्णव हैं, इस शिक्षा मिलती है कि अंत में आसक्ति को त्याग देना चाहिए। धीरे धीरे हम सभी को संसार से वैराग्य लेना चाहिए। इसकी अनुभूति कैसे होगी? वैष्णव संघ से। वैष्णव संघ में हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, भगवान की स्मृति नहीं हो पाएगी। आप मंदिर से बाहर हट करके देखिए लोगों की क्या स्थिति है, आप बाहर जाकर देखिए कि आप किस प्रकार के वातावरण में अपना जीवन बिता रहे हैं। धीरे धीरे सारे नियम आपके छूट जाएंगे, क्योंकि वैष्णव का संग नहीं है। तो वैष्णव का संग चाहिए, वैष्णव के संग में आने से मन चार्जिंग चार्ज में हो जाता है और उनको ज्ञान होता है कि नहीं नहीं हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहां इतनी व्यवस्था है फिर भी लोग तमोगुण से घिरे रहते हैं। अब देखिए तीनों गुणों का चक्र चलता रहता है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण का। यहां तो सारी व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था के बाद भी यदि भगवान में मन नहीं लगेगा तो फिर बाहर जाकर कैसे आपका मन लगेगा। बाहर तो भौतिक जगत का इतना चमक दमक है कि उसी में फिर आसक्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे फिर भगवान को, फिर आपकी सदगति नहीं होगी। तो भगवान ने शिक्षा दिए है कि शरीर त्यागने के लिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और मेरे ही लीलाओं का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ो। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुदर्शनः, फिर इस संसार में नहीं आओगे, मेरे धाम में आ जाओ। तो साधु संघ में रहते हुए और इसी साधु संघ पर चेतन महाप्रभु ने बहुत जोर दिया है, भगवान ने भी जोर दिया है, उद्धव जी से कहा है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में, जैसा साधु संघ मुझे प्रिय है वैसी दूसरी वस्तु मुझे प्रिय नहीं है। वैष्णव वैष्णव जहां रहते हैं वहां भगवान का ही गुणानुवाद करते रहते हैं। आप सब जितने भी ब्रह्मचारी बने हैं या भगवान से जुड़े हुए हैं, ये सब वैष्णव के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वैष्णव के संग से हम लोग का जीवन इस इस्कॉन में आया और इसमें यही सिखलाया जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए और किस प्रकार से शरीर को त्यागना चाहिए। तो फाइनल निष्कर्ष यही निकलता है, इस कलयुग में भक्ति योग के माध्यम से जो सबसे सरल विधि है, भगवान का नाम लेते हुए इस शरीर को त्याग देना चाहिए। फाइनल ये बात है कि संसार में तो हम लोग रहते हैं तो कैसे रहें। विद्वानों ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, जैसे कमल है, कमल जल में रहता है, कीचड़ और जल में ही रहता है, कीचड़ और जल से ऊपर रहकर भगवान सूर्य को देखकर वो मुस्कुराता रहता है, खिला रहता है। कीचड़ और जल से उसका जन्म है लेकिन कीचड़ और जल में वो आसक्त नहीं है, भगवान सूर्य को देखकर वो मुस्कुराता रहता है। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, भजन करो जिंदगानी में, इस दुनिया में वैसा रहो जैसा कमल रहता है पानी में। हम लोग को छोड़ना नहीं है, सबको भगवान से जोड़ना है, ये हमारी संस्था है। जितने भी आपके स्वजन संबंधी हैं और जितने भी आप जिसको मानते हैं कि हमारा परिवार है तो उसको भगवान से जोड़िए, उसको भी शिक्षा दीजिए। जब नहीं जुड़ता है तो शास्त्र कहता है उसको त्याग दो। तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वेदही। जिसको सीताराम प्रिय न हो, राधा कृष्ण प्रिय न हो, तो फिर उस परिवार में आसक्त रहने से फायदा क्या। यदि आप चाहते हैं तो उसको भक्त बना दीजिए, यदि भाई हैं तो भक्त बनाइए, तब उसको वैकुंठ पहुंचाइए, जैसे विदुर महाराज धृतराष्ट्र महाराज को पहुंचा दिए, निकाल दिए कीचड़ से, छोड़िए मत उसको, जोड़िए। यदि नहीं जुड़ते हैं तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, फिर आप वहां से निकलिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद जी अपने पिता की बात को नहीं माने, पिता की बात को त्याग दिए। जैसे हिरण्यकश्यप कहता था मेरा भजन करो, प्रहलाद महाराज कहते नहीं, आप भगवान नहीं है, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण भगवान है, मैं उनका भजन करूंगा। प्रहलाद जी त्याग दिए, मतलब उनकी बात को नहीं माने। और भरत महाराज अपनी महातारी को त्याग दिए, माता जी को त्याग दिए, और गोपियां अपने पतियों को त्याग दिए और भगवान कृष्ण के शरण में आई। सारी दुनिया आज उनकी गाथा गाता है और उनकी उनकी गाथा को गाकर अपने जीवन को पवित्र करता है, उन्हें उनको कोई दोषी नहीं ठहराता है। उनकी गाथा गाने से जीवन मंगलमय बनता है। तो भगवान के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, कहने का मतलब यह है। आप प्रभुपाद जी बोलते सबको जोड़िए, सबको उपदेश दीजिए,
अगर जुड़ गया तो ठीक है, नहीं जुड़ते फिर आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। लेकिन सबको कृष्ण भावना से भावित बनाइए कीजिए, तभी मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। छोड़ना क्या है? गंदी आदतों को छोड़ना है, अलीगल अनर्गल वस्तुओं को छोड़ना है, जिसे चार महान पाप है उसको त्यागना है, और चार चीज को करना है, भगवान का नाम जपना है, गीता भागवत पढ़ना है, भगवान की सेवा करना है, ये सब करते रहना है, तब हमारा और आपका जीवन मंगल होगा। तो कहने का भाव यही रहा कि अंत में घर गृहस्थी के आसक्ति से विरक्त होना चाहिए, ये भागवत की मूल शिक्षा है। विरक्ति बहुत जरूरी है, नहीं तो आसक्ति होने से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है, आवागमन के चक्र से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, फिर 84 के ही चक्कर में पड़े रह जाएंगे। जड भरत जी को तो 3 जन्म का चक्कर लग गया। सोचिए अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कैसे भगवतधाम जा सकते हैं? यदि हमारी चेतना शुद्ध हो जाए तो हम भगवतधाम इसी जन्म में चले जाएंगे, इसी जन्म में। जैसे आप लोग कथा सुनते हैं ना, उस मोचिका और नारद जी का, कि कितने जे मोचिका और ब्राह्मण का, मुझे भगवान का कब दर्शन होगा? लेकिन नारद जी जब वैकुंठ से आए तो बोले ना कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं हे मोची, उतने समय लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन जब ही वो भगवान का गुणगान चालू किया, वो प्रसन्न होगा कि इतने समय में मेरा दर्शन हो जाएगा। हाँ, जब ही कीर्तन चालू किया, झट से भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, उसका जीवन धन्य हो गया। नारद जी जब ही भगवान का गुणानुवाद करते हैं, तभी भगवान उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारी चेतना शुद्ध रहेगी तो हम इसी जीवन में भगवतधाम चले जाएंगे, अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो हम भगवतधाम नहीं जा सकते। राम राम कहते भी आप नहीं जाएंगे, ये आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड है। याद रखें, चेतना कहाँ है आपकी? चेतना को शुद्ध करना है, इसलिए इसके लिए भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। हमेशा भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, तब जाकर के श्रवण और कीर्तन करने से चेतना की शुद्धि होती है। बार बार भगवान का चिंतन करें, स्वाध्याय करें, स्मरण करें, साधु संग में रहें और अभ्यास करें। और दूसरी बात यह है, हमारा मन क्यों अशांत है? प्रश्न उठेगा, हम लोग का मन भगवान में क्यों नहीं लगता है, कारण क्या है? कारण ये है कि आपके मन में विभिन्न प्रकार की भोगने की आसक्ति है, आप बहुत सी वस्तुओं को चाहते हैं। एक शब्द में उत्तर दे दिया जाता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वो शांत है। अगर आपके अंदर कामनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, तो आप दुखी हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए दुखी हैं। और कृष्ण भक्तों के लिए सारे वैदिक शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान की सेवा के चलते भगवान के आगे वो किसी वस्तु को नहीं चाहते हैं। जब भगवान मिल गए तो आपको किसी वस्तु की कमी रहेगी ही नहीं। ध्रुव महाराज जी भगवान को देखे तो फिर उस लोक की कामना नहीं की कि हमको उच्च पद मिले। भगवान ऐसे अद्भुत और दिव्य पुरुष हैं जिनको देखने के बाद में भोग भोगने की वंचा नहीं होती है, चित्त की मनोवृत्ति बदल जाती है। तो चेतना की शुद्धि अभ्यास करें, निष्काम, इसीलिए बोला कि निष्काम बने, निष्काम भक्त बने, माने सांसारिक वासनाओं को न रखें, केवल भगवान की भक्ति की ही कामना रखें। काम यह निष्काम का मतलब भौतिक भोग भोगने की क्यों त्यागने की मनोवृत्ति से, भोगों के प्रति हमारी मनोवृत्ति न रहे। निष्काम का मतलब है केवल भगवान की सेवा। जैसे भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह बर दान न आन। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम जी पद, जन्म जन्मांतर मुझे राम जी के चरणों की भक्ति चाहिए, न आन, दूसरी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। जबकि भरत जी के चरणों में रिधि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी है, आपको क्या चाहिए? सोचिए। लेकिन भरत जी इतने त्यागी हैं, कहा जाता है कि गोपियों का स्थान जो श्रीमद् भागवत में आता है, रामायण में वो त्याग के मामला में भरत जी का आता है। और वैसे हनुमान जी भी हैं, इनके पास भी सिद्धियों की कमी नहीं है, लेकिन देखिए केवल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। आप देखिए, कोई भौतिक वस्तु की कामना करते ही नहीं है। प्रभु क्या आदेश है, क्या मैं आपकी सेवा करूं? आज सारी दुनिया हनुमान जी के चरणों की पूजा करती है, हनुमान जी महान वैष्णव है। यह है, हम दुखी हैं केवल भौतिक इच्छाओं से, तो उन इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। और इच्छाएं त्यागेंगे कैसे? वैष्णवों के संग में रहने से। आज जितने भी बैरागी बने हैं ना, ये सब वैष्णवों के संग से बने हैं, घर द्वार छोड़ करके बैरागी बन जाते हैं, ये साधु संघ की महिमा है। तो इसलिए भगवान आदेश देते हैं कि वैष्णवों को भक्तों को हमेशा साधु संघ में रहना चाहिए और साधु संघ में रहते हुए भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए जप करते हुए इस शरीर को त्याग देना चाहिए। यह है शरीर त्यागने की विधि। अष्टांग योग की विधि को हम उतना नहीं अपना सकते और यदि आप सक्षम है तो उसे सहायता मिलती है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पृथु महाराज भगवान का ही स्मरण करते हुए शरीर को त्यागे और भगवत धाम गए। तो निष्कर्ष यही रहा कि भक्ति योग का हम सभी अभ्यास करें, हमेशा जप करते रहें, चिंतन करते रहें, वैष्णवों के संग में रहें तो हम हमेशा कृष्ण भावना से भावित रहेंगे और अंत समय में हम निश्चित है कि भगवत धाम जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है, ऐसा विश्वास रखिए। जैसा भगवान गारंटी देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, बोलते हैं ना, जो मेरे शरण में आता है मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ, डरो मत मेरे शरण में आओ। तो नाम ले हम लोग और विश्वास रखें कि आप जाएंगे। जैसे आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, आपको विश्वास है कि पैसा मुझे मिलेगा और पैसा आपको मिलता है तभी तो जमा करते हैं। उसी प्रकार से भगवान गीता में गारंटी देते हैं, जो मेरा प्रचार प्रसार करता है निश्चित है कि वो मेरे धाम में आएगा। तो हम लोग भगवान का प्रचार प्रसार करते रहें, उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हुए चिंतन करते हुए इस शरीर को त्याग दें, इसी में मानव शरीर की सार्थकता है। हरे कृष्ण। कुछ जिज्ञासा?
हरे कृष्णा प्रभु
जी।
मेरा दो प्रश्न है
जी।
एक तो योगी लोग जो ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करके भगवत धाम जाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा?
नहीं, योगी लोग होते हैं जो प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं व्याख्या में, जो बुद्धिमान योगी होते हैं वे भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं। ये शरीर छोड़ने की विधि है, जो हम लोग नहीं जानते उस विधि को, तो हम शरीर को नहीं त्याग सकते, लेकिन वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर को त्यागेगा क्योंकि यौगिक क्रियाओं में पारंगत है। यदि वो कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर ब्रह्मरंध्र प्राण को ब्रह्मरंध्र से निकालेगा तो भगवत धाम जाएगा, निश्चित है। अगर वो प्रकाश का चिंतन करेगा तो भगवत धाम नहीं जाएगा, उच्चतर लोकों में जाएगा, फिर वहां से नीचे आ जाएगा, ये बात है। तो उस यौगिक क्रिया को, जैसे नव योगेश्वर जानते हैं इस प्रक्रिया को, चारू कुमार जानते हैं, योग साधना में परिपूर्ण है, और जो यौगिक क्रियाओं में परिपूर्ण है वो कहीं भी जा सकता है। जैसे नारद जी देखिए कहीं भी उड़कर चलते रहते हैं, चारू कुमार कहीं भी जा सकते हैं, माने बैकुंठ तक आदमी जा सकता है, याद रखिए। दुर्वासा जी भी यौगिक क्रियाओं को जानते हैं, वो भी बैकुंठ तक भी पहुंचे थे, भगवान ने उनको विदा किया, जाइए मेरे भक्त अम्बरीश के पास जाइए, हम भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो जो यौगिक क्रिया अपनाता है उसमें ऑटोमेटिक शक्ति आती है, तो उन शक्ति के माध्यम, उन शक्तियों के माध्यम से वह उच्चतर लोकों की यात्रा करता है। तो यदि हमारा मन भगवान में लग जाए तो हम बैकुंठ तक भी जा सकते हैं और जाते हैं, प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं। तो उस योगी को माने भगवान का चिंतन, जो योगी भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागेगा, प्राण को निकालेगा ब्रह्मरंध्र से, तो कृष्ण धाम जाएगा। और दूसरा
प्रभु, हरे कृष्णा, हम भक्त लोगों को ज्यादा ज्यादा भगवान का चरण कमल में मन लगाना चाहिए
जी।
तो हम महामंत्र जप करने के समय हमको कौन सा स्थान में भगवान का चिंतन करना चाहिए, यानी हमारा हृदय में भगवान को देखना चाहिए, यानी दो अंकों को बीच में, यानी मस्तक में
जी। ये तो आप सुन चुके हैं, बार बार प्रवचन दिया जाता है, बताया जाता है। जैसे कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बताए हैं कि सर्वप्रथम भगवान का ध्यान भगवान के चरणों से प्रारंभ करना चाहिए, ये ध्यान करने की विधि है। चरण में भगवान के है ना 19 चिन्ह है, उन चरणों का ध्यान करते जाएं, धीरे धीरे ऐसे ऊपर आए, घुटना पर आए, जांघा पर आए, वक्षस्थल पर आए, ऐसे करके पूरी भगवान के मधुर मुस्कान का चिंतन करें। चरणों से चिंतन करने की ये विधि है, मन को चरण कमलों में लगाना चाहिए क्योंकि भगवान के चरणों में जादू है, चरणों से ध्यान करना चाहिए, ये फाइनल उत्तर है। ऐसे भगवान का पूरा नख सिख दिव्य है, लेकिन नख चरण नख से लेकर सिख तक सबसे मधुर हास, सबसे मधुरतम जो आकर्षक है वो भगवान का मधुर मधुर मुस्कान है। सुना है ना, ये जो मधुर मधुर मुस्कान है ये सबको खींच लेती है। तो आप चिंतन करें क्योंकि भगवान का नख से सिख तक सारी इंद्रियां दिव्य हैं, सकल इंद्रिय दिव्य मनती। तो जहां भी आपका मन लगे, जहां भी जाए वहीं मन लग जाएगा। अब राधा रानी तो किसी भी भगवान की किसी भी अंग का चिंतन करती हैं या वस्त्र का चिंतन करती हैं, वहीं उनका मन लग जाता है। जहां जाए मन तहे लुभाई, क्योंकि भगवान इतने आकर्षक हैं कि किसी भी चरणों में किसी भी अंग में मन लग जाता है। तो चरणों से आप दर्शन प्रारंभ करें। ध्यान करना है तो कैसे करें, विधि बताई जाती है ध्यान करने की, ये विधि है चरणों से लेकर तब हम मुखमंडल तक जाएं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हाँ जी, आए तो बोला ना, रामायण में वर्णन है, क्योंकि उनको राम जी का जो राज्याभिषेक हुआ तो दशरथ जी की ये मनोकामना थी कि मैं अपने बेटे का राज्य देखूं। राज तिलक नहीं कर सका, बंद दे दिया। इनके मन में बहुत बड़ा अफसोस रहा। कल राज्याभिषेक होने वाला है, सुन रहे ना, इसके बाद वो कल राज्याभिषेक की जगह पर वो वनगमन दे दिए, वनवास दे दिए। तो इनका उनको बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सका। तो उनकी चेतना राज्याभिषेक देखने की थी, इसलिए वो भगवत धाम नहीं गए, स्वर्ग में ही रहे। और जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो स्वर्ग से आए थे। रामायण में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है, आप से चले गए। हरे कृष्ण। और कोई जी? हाँ हाँ, इसीलिए वो स्वर्ग में रहे। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप भाव से चाहे अभाव से, कुभाव से, जैसे भी भगवान का स्मरण करेंगे वो नाम आपको अपना चमत्कार दिखलाएगा। अद्भुत शक्ति है उसमें, वस्तु शक्ति है। बोलिए।
हरे कृष्णा। अभी जैसे दशरथ जी, दशरथ तो मनु शत्रुपा है, वो तो पहले भगवान को प्रार्थना किए थे मैं आपका ये, वो स्वर्ग कैसे जाएंगे? वो तो अगर स्वर्ग जाएंगे कोई व्यक्ति छीने पुणे लोग मरते भी संती, तो भगवान को चिंतन करते स्वर्ग कैसे जाए?
वो आप नहीं समझे बात को, प्रवचन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। आप नाम ले रहे हैं लेकिन चेतना कहाँ है, चिंतन कहाँ है आपका? आप समझ गए हमारी बात?
चिंतन होने के बाद भी।
हाँ।
लेकिन वो तो भगवान को चिंतन कर रहे हैं ना।
जो भगवान का जो चिंतन करता है ना, वो उसको जमदूत नहीं पकड़ सकते, ऊंच लोकों में जाता है। यदि भगवान में उसकी चेतना नहीं रही, समझ रहे ना, दूसरे में चेतना रहे, तो उस व्यक्ति को जमदूत नहीं पकड़ सकते, वो व्यक्ति ऊंच लोक में जाता है। दशरथ जी से स्वर्ग लोक में गए, आप समझ गए ना। जैसे भी भगवान का नाम लेंगे, वो नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपको जमदूत के हाथों नहीं जाने देगा, वो आपको ऊंच लोगों को नाम पहुंचाएंगे, आपको सुअवसर देगा पुनः, और आप फिर भगवत धाम चले जाएंगे। शुद्ध चेतना को, जिसकी शुद्ध चेतना होगी वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, जिसकी शुद्ध चेतना नहीं होगी वो नहीं जा सकता है। इसे अजामिल आप सुने ना, अजामिल को उस समय शुद्ध चेतना नहीं थी।
वो इसमें फर्क है ना, वो तो मनु शत्रुपा, तो
मनु शत्रुपा जो थे वो तप किए थे, और तप करके यही वरदान मांगे थे कि आप हमारे पुत्र बने, समझ गए, वही दशरथ कौशल्या हुए। और दशरथ जी ये वरदान मांगे थे, याद रखिए, वरदान में दशरथ जी की ये विशेषता थी, साथ में ये वरदान मांगे थे कि जिस प्रकार मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता है और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए उनको शरीर त्यागना पड़ा। राम के बिना वो नहीं रह सकते थे, लेकिन उनको चेतना थी कि मैं अपने पुत्र को राज्याभिषेक नहीं कर सका। आपका अगला शरीर आपके चिंतन पर निर्भर करता है, जैसी मति वैसी गति, अंतकाले च मामवा। इसलिए स्मरण पर ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान का ही स्मृति बने और हमारी चेतना शुद्ध हो। आप बार बार सुनते आ रहे हैं, कुंती महारानी कह रही हैं, देवहूति महारानी कह रही हैं, देवहूति महारानी भी बोलती हैं कि हमारी आसक्ति परिवार में न हो, प्रभु आप में हो। तो चेतना की शुद्धि के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा।
ये क्या वास्तविक उनके रहस्य है ना, जैसे वो तो फिर दूसरे जन्म में द्वापर युग में ये बनते हैं ना।
जो वरदान जो मांगता है, एक जन्म में मनु शत्रुपा है, वही मतलब दशरथ कौशल्या बने हैं, तो तप किए भगवान को पुत्र पाने के लिए, तो शरीर त्याग करके वही जन्म लिए, फिर दशरथ और कौशल्या के रूप में आए, तो उनके यहाँ फिर भगवान उस जन्म में नहीं मिले, दूसरे जन्म में मिले, दूसरे जन्म के लिए कहे थे, तो दूसरे जन्म में फिर भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किए। वो जैसा आपकी इच्छा रहती है उसके अनुसार उसका फल मिलता है। एक जन्म में तपस्या की, दूसरे जन्म में पुत्र की प्राप्ति की, और किसी को उसी जन्म में मिल जाता है, जैसे माता अदिति को उसी शरीर में वामन भगवान की प्राप्ति हो गई। चेतना पर डिपेंड करता है।
उन लोगों का तीन जन्म का श्राप था। यदि आप प्रहलाद जैसे भक्त होंगे तो भागवत का कथन एक ही पीढ़ी तर जाएंगे, अगर वैसे भक्त नहीं है तो कम से कम एक पीढ़ी तो तार सकते हैं, अपना उद्धार तो कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, कमाल कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, आप बता रहे हैं भगवत धाम ही जाना है भगवान के पास
जी,
तो ये तो जीवन की सार्थकता ही है, लेकिन भगवान यहाँ पे क्यों नहीं है?
यहाँ पर सामने दिख रहे हैं भगवान, वो तो सर्वत्र हैं, मंदिर भगवान का घर है, सामने आपको दिखिए बांसुरी बजाते हुए दिख रहे हैं, भगवान तो कण कण में है, और मंदिर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर भगवान विराजते हैं, आप देखिए भगवान को दर्शन करना है तो आप मंदिर में जाइए दर्शन करें, मंदिर में आप दर्शन करेंगे। जैसे विद्यालय में बच्चों को अध्ययन माने ज्ञान प्राप्त करना है तो वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहां अध्यापक मिलते हैं। आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, आप उस विश्वविद्यालय में जाएं, वहां वो शिक्षा मिलती है और आप सब बनते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, मंदिर में भगवान विराजमान हैं, देखने की अनुभूति होनी चाहिए। तो क्या आपको ऐसा है कि भगवान यहां नहीं है?
इज ऑल्सो अ पर्सन, मतलब एक भगवान का एसोसिएशन प्राप्त करना, भगवत प्रेम जो कृष्ण पदे प्रेम धन, तो वह तो जो आ जाए वह असली भगवत
प्रेम का बस, प्रेम का यही वास्तविक अंतिम फाइनल जजमेंट यही दिया जाता है कि भगवान को हर एक प्रकार से हम सुखी देखें। जैसे गोपियां बोलते थे ना कि हर एक प्रकार से भगवान को सुखी सुखी सुखपूर्वक देखने का, सुखपूर्वक रखने का नाम प्रेम है, और अपने इंद्रिय तृप्ति का उसको काम बोलते हैं। तो प्रेम में मैंने हम देखे कि भगवान जैसे भी हो सुखी हो, जैसे गोपियां थे वो वन में जाते, भगवान जब वन में जाते थे तो उन लोग दुखी रहते थे कि वो भगवान वन में जा रहे हैं मेरे प्रियतम, उनको कांस मैंने कांट और कुश उनके पांव में गड़ेंगे, वो दुखी रहते थे, और जब वे लौट करके आते थे मुस्कुराते हुए तो देख करके सुखी हो जाते थे। तो उनका कैसा प्रेम है? वो है प्रेम। प्रेम यदि सीखना हो हम लोगों को तो उन लोगों को जीवनी से सीखना चाहिए। उनको दर्द होता है कि भगवान के पांव में कहीं कांटा न चुभ जाए। यदि आपके अंदर ऐसी अनुभूति नहीं होती है तो प्रेम नहीं है। हमेशा भगवान को सुखी देखने का उसमें तथ्य बना रहता है। जैसे माता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक की भावना रहती है कि हमारा बेटा सुखी रहे, एक चेतना होती है, सुखी देखना चाहती है, उसी प्रकार से भक्त भगवान को हमेशा सुखपूर्वक सुखी पूर्वक देखना चाहते हैं। वे हैं सुख के केंद्र बिंदु, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसी भावना रहती है कि हमारे प्रभु को किसी प्रकार से कोई दुख न हो, वे सदैव प्रसन्न रहे। भगवान को सदैव सुखपूर्वक देखने की प्रक्रिया का नाम है प्रेम। भले हम दुख से हैं लेकिन ये सुखी रहें, यह है प्रेम का भाव। प्रेम में किसके आंसू बहती है बोलिए ना, हम लोग भक्त हैं लेकिन भगवान के लिए आंसू बहती है? चेतन महाप्रभु साक्षात प्रेम के मतलब दूत हैं, आप देखिए उनके नेत्रों से झरझर आंसू बह रही है, नदी जैसा उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित होती है, गोपियों के आंखों से अश्रु बहती है, हमारे में आप में कहां ये सब अश्रु धरा प्रवाहित हो रहे हैं, तो कहां प्रेम है? प्रेम है ही नहीं, संसार की सारी वस्तुएं भरी हुई है मन में, तो कहां से वो प्रेम आएगा? इसलिए वैष्णव के संग में रह करके त्याग की विधि सीखनी चाहिए और भगवान को हमेशा प्रसन्न रखें, ये भक्ति योग के माध्यम से सीखना चाहिए। हम लोग भक्त जब तो कर रहे हैं लेकिन चेतना कहाँ है? संसारी भोग की तरफ है, तो कहां से भगवान मिलेंगे, कहां से अश्रु बहेगी? आपको तो यहीं तक नहीं विश्वास है कि भगवान मंदिर में है तो यही आपको विश्वास है? अभी अभी आप बोल रहे हैं, इतने दिनों से भक्ति करके भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, इतना खर्च किया जा रहा है, इतना लाखों करोड़ों रुपए, ऐसे ही विश्वास है? हाँ, कलयुग में भगवान नाम रूप से ही अवतार है, कली काले नाम रूप में कृष्ण अवतार, यदि इनका दर्शन करना चाहते हैं तो नाम जपिए, नाम से मिल जाएंगे। गोपियों ने नाम कीर्तन गाया, भगवान मिल गए, नारद जी कीर्तन करते हैं, भगवान मिल जाते हैं, इसलिए नाम कीर्तन करें आपसे भेंट हो जाएगी। हरे कृष्ण। प्रेम से बोलिए ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल।